अध्याय आठवां। स्वस्थ होने के पश्चात मैंने जेफ और रामसे के साथ पूर्व की ओर अपनी यात्रा जारी की। उन दिनों विश्व भ्रमण करने वाले ऐसे यात्रियों का प्रचलन था जो बहुत ही कम बजट की सुविधा रहित यात्रा में आनंद पाते थे। उनमें से अधिकतर यात्री रोमांच प्रेमी होते थे और अनेक की अध्यात्म में रुचि होती। कभी कभी हम सर्वाधिक अनपेक्षित स्थानों पर मिलते। अर्जेरियम में राम से और जैफ कुछ भ्रमणकारी मित्रों से मिले। उन लोगों ने एक बस चालक को उसकी कंपनी की बस में उन सबको निःशुल्क तेहरान ले जाने के लिए मना लिया था। बस में लगभग आधी जगह खाली थी, इसलिए उसमें कुछ यात्रियों के लिए पर्याप्त स्थान था। इस प्रकार उनके साथ रहकर हमने तुर्की की सीमा पार की और ईरान में प्रवेश किया। सीमा पर बने भव्य अप्रवासी भवन के अंदर हमने शाह का चित्र देखा जो लगभग पूरी दीवार के आकार का था। वहां पर अमेरिकी सरकार द्वारा एक नोटिस लगा था जिसे पढ़कर हम गंभीर हो गए। बड़े अक्षरों में अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी दी गई थी कि ईरान में हशीश या अफीम रखने ले जाने या बेचने की सजा मौत है। पकड़े जाने पर अमेरिकी सरकार अधिक सहायता नहीं कर सकती थी। बस ड्राइवर को सरकारी औपचारिकताओं के कारण देर हो गई, इसलिए हम बस में बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। शाम का समय था। शीघ्र ही बच्चों का एक झुंड आकर बस की खिड़की से अजनबी विदेशियों को देखने के लिए जमा हो गए। भले ही उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन वे सुंदर दिख रहे थे। मैं लगभग 4 वर्ष के एक छोटे से बच्चे को देखकर मुस्कुराया, परंतु उसने मेरी ओर इतनी घृणा भरी आंखों से देखा कि मेरी सांसें थम गई। इतने छोटे बच्चे के मन में इतनी घृणा का होना कैसे संभव है? उसकी वे घूरती आंखें बार बार मेरे दुःस्वप्नों में आकर परेशान करती थी। ये देखना बहुत भयावह था कि बच्चे कितनी सहजता से संस्कार ग्रहण कर लेते हैं। इससे पहले कि वे स्वयं सही गलत को समझ सकें, परिवार और परिवेश द्वारा उनके स्वभाव को प्रेम, भय अथवा घृणा में ढाला जा सकता है। हम टैब्रिज नामक एक पुराने शहर में पहुंचे। एक दिन जब मैं अकेले शहर की गलियों में घूम रहा था, एक भले परिवार ने मुझसे अपने घर चलने का आग्रह किया। ईंटों से बना 2 कमरों का मकान था। घर की स्त्रियां अनेक वर्षों से एक ही फारसी कालीन को बुनने में कड़ी मेहनत कर रही थीं। माँ और बेटियां अपने सादे घर के फर्श पर बैठकर उस बहुमूल्य कलाकृति का निर्माण कर रही थी। जटिल डिजाइन के एक वर्ग इंच में लगभग 250 तक हाथ से लगी गांठें थीं। प्राकृतिक रंगों से रंगी उन चमक रही थी। हर रंग खिलकर उभर रहा था। लाल, नीला, हरा, नारंगी, पीला, सफ़ेद और बैंगनी जैसे अनेक रंगों के धागों से वे बड़ी महीनता से बुन रही थी। उनका अतिथि सत्कार इतना सरल और उदार था कि मुझे लगा मानो मैं उनके परिवार का ही एक सदस्य हूँ। उन्हें अंग्रेज़ी का एक शब्द भी नहीं आता था, लेकिन उससे कुछ अंतर नहीं पड़ा। रात्रिभोज के लिए परिवार के सभी पुरुष भूमि पर बैठ गए और मुझे भी अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। पहले उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद करती एक सुंदर प्रार्थना गाई और फिर चाय और रोटी के खाने के लिए बैठ गए। जब हम प्रसन्नतापूर्वक खा रहे थे, तभी उनका 10 वर्षीय बालक गर्व से मुस्कुराता हुआ दरवाजे में अंदर आया। उसने अपनी बंद मुट्ठियों में कुछ छिपाया हुआ था। वे थे उनके पेड़ से लाए खजूर। मेरे पास आकर उसने वे रसीले फल मेरे प्लेट में रख दिए। सब हंसते हुए मेरे सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। दिन में 5 बार वो परिवार अपने सब कार्य छोड़कर मक्का के पवित्र तीर्थस्थल की ओर मुंह करके नमाज अदा करता था। इन सरल हृदय लोगों की स्वाभाविक भक्ति ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने इस अनुभव के लिए भगवान को धन्यवाद दिया और एक भटकते अजनबी के प्रति करुणा दिखाने के लिए उस परिवार को भी। हमारी बस ईरान के अद्भुत भूभागों पर दौड़ने लगी। जहां तक दृष्टि जाती थी समतल सूखा रेगिस्तान चारों दिशाओं में फैला था। घंटे बीत जाते और जीवन का कोई चिन्ह नहीं दिखता। समय समय पर रेत की पहाड़ियां या मिट्टी के बने छोटे घरों के गांव कुछ दूरी पर दिखाई देते। हम दिन के ठंडे समय में और पूरी रात भर यात्रा करते। एक रात चंद्रहीन आकाश में अनगिनत सितारे चमचमा रहे थे। उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो हम बस की खिड़की से उन्हें निहारने लगे। तब मेरे सहयात्रियों ने मुझसे हारमोनिका बजाने के लिए आग्रह किया। सितारों के सागर को देखते हुए मैंने अनायास ही एक धुन बजाई जो ईश्वर के प्रति मेरी सच्ची उत्कंठा से भरी थी। मैंने अपने हृदय की समस्त भावनाएं उस धुन में उड़ेल दी। जब मेरी भावसंकुल धुन बज रही थी, बस में सभी शांत हो गए। धुन समाप्त होने पर सभी ने मेरी प्रशंसा की। मैंने चारों ओर देखा और पाया कि अनेक यात्रियों की आंखें भरी आई थीं। मुस्कुराते हुए जेफ ने पीछे की सीट से मेरा कंधा थपथपाया और सामने से रामसे ने अपना अंगूठा ऊपर उठाकर बधाई दी। मैंने स्वयं को तुच्छ अनुभव किया, ये जानते हुए कि वास्तव में मुझे ये यंत्र अच्छी तरह से बजाना नहीं आता था। मैंने भगवान और ओपालोका के जिम्मे द बेयर को धन्यवाद दिया। ईरान के रेगिस्तानों से गुजरते हुए मुझे अपने माता पिता की चिंता होने लगी। उन्हें अनेक सप्ताह पहले मेरे घर लौटने की आशा थी और एथेंस के बाद मैंने उन्हें कोई पत्र भी नहीं लिखा था। वे बुरी तरह से परेशान होंगे, फिर क्यों मैं उन्हें पत्र नहीं लिखा। सच्चाई ये थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पत्र कैसे लिखूं। भले ही मैं किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग कर स्थलमार्ग से भारत जाने के अपने निर्णय का वर्णन करता, उनका हृदय टूटता ही। क्या कर सकता था मैं? ईश्वर की खोज मेरा एकमात्र लक्ष्य था, जिसके लिए मैं जी रहा था। यदि मैं उसकी उपेक्षा करता तो मैं जानता था कि मेरा जीवन खोखला बन जाता। मेरे माता पिता ने हम तीनों भाइयों के लालन पालन के लिए अपने तन मन और प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वे दोनों गरीब यहूदी परिवारों से आए थे, जिनके अप्रवासी माता पिता धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए लिथुनिया, रोमानिया, रूस और पोलैंड से भागकर अमेरिका आए थे। जहां तक हम जानते थे, वहां बचे हमारे सभी संबंधियों को बाद में नाजियों ने मार दिया था। बचपन में मेरी माँ अनेक कठिनाइयों से गुजरी। जब वे छोटी थीं तो उनके पिताजी चल बसे और शीघ्र ही उनकी बड़ी बहन पर गली में एक हमला हुआ जो जीवन भर के लिए उन्हें एक गहरे सदमे में डाल गया। किशोरावस्था में मेरी माँ को काम करके अपनी बीमार माँ, अपंग हुई बड़ी बहन और छोटी बहन को संभालना पड़ता था, किंतु वे सदैव हंसमुख रहती थी और भगवान ने जो भी दिया उसके लिए कृतज्ञ रही। विवाह के पश्चात उन्होंने 24 घंटे पति और बच्चों की निष्ठा से सेवा की, लेकिन वो कभी भी अपने पहले परिवार को नहीं भूली और तंगी में भी चुपचाप बचत करके उनकी मदद करती रही। अपने तीनों लड़कों को बड़ा करते हुए वे अकेले घर के सारे काम करती, जैसे सफाई, कपड़े धोना और इस्त्री करना, खरीदारी और प्रत्येक शाम स्वादिष्ट भोजन बनाना। वे छरहरी, उल्लसित और सलीके से बनी सवरी रहती। मेरे सभी दोस्तों के अभिभावक उनकी सुंदरता और सौम्यता से प्रभावित थे। वे केवल अपने परिवार की ही नहीं अपितु सभी की सहायता करती थी। जहां तक मुझे स्मरण है, वे खुशी खुशी विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं में स्वयं सेवा करती थी, विशेषतः दान एकत्रित करने के लिए आयोजित नृत्य कार्यक्रमों में। मैं और मेरे भाई हमेशा सावधान रहते कि कहीं वे अचानक हमारे कपड़े और खिलौने दान में न दे दें। जीवन भर उन्होंने हमें कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया। यदि मैं अपने मित्रों के घर भोजन करता अथवा यदि कोई हमारी सहायता करता तो वे सुनिश्चित करती कि हम उनका धन्यवाद करें। बच्चों की सभी बुरी आदतों से सबसे अधिक कृतज्ञता उन्हें परेशान करती। परिणामस्वरूप उन्होंने कभी भी हमारी उत्पटांग मांगे पूरी कर हमें बिगाड़ा नहीं, और यदि हमें कोई उपहार मिलता तो वे कहती, इसके साथ आई भावना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने उदाहरण से हमें सिखाया, चाहे उन्हें कोई बहुमूल्य आभूषण देता या साधारण फूल, वे समान रूप से प्रसन्न होती। इससे उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रसन्नता भौतिक वस्तुओं से नहीं आती, अपितु उस प्रेम भावना से आती है जिससे उन वस्तुओं को दिया जाता है। हम अच्छे कार्य करते देख ये बहुत गर्वित होती। भले ही परिणाम बड़ा हो या छोटा, यदि हमारे प्रयत्न सच्चे होते तो वे प्रसन्न होती। बार बार उन्होंने हमारे प्रति अपनी निस्वार्थ सेवा भावना को प्रदर्शित किया। जब मेरा कंधा खिसक गया था तो वे तुरंत मुझे अस्पताल ले जाने के लिए वहां पहुंच गई। ऑपरेशन के बाद सबसे पहले मैंने किसी को अपने पलंग के निकट देखा तो वे मेरी माँ थी। मैंने खांसते हुए उनसे अनुरोध किया, माँ तुम्हारी सिगरेट से मुझे परेशानी हो रही है। जैसा कि उस समय अमेरिकी महिलाओं में फैशन था, वे पिछले 15 वर्षों से प्रतिदिन 2 पैकेट सिगरेट पी रही थी। लेकिन इस विचार से कि उन्होंने मुझे कष्ट पहुँचाया था, उनका दिल गहराई से प्रभावित हो गया। उन्होंने तुरंत सिगरेट बुझा दी और उनकी भूरी आंखों से आंसू छलक आए। लजाकर वे मेरे पलंग के पास आईं और मेरे गालों को सहलाने लगी। बेटा रिची, यदि मेरे सिगरेट पीने से तुम्हें कष्ट होता है तो मैं वचन देती हूं कि जीवन भर सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगी। उन्होंने दोबारा कभी सिगरेट नहीं पिया। मेरे पिताजी काफी कुछ मेरी माँ के ही समान थे। 15 वर्ष की अवस्था में घर में गरीबी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उन्होंने मजबूरी करके अपने माता पिता की सहायता की। विवाह के पश्चात कड़ी मेहनत करके वे अपने परिवार के साथ साथ अपने वृद्ध माता पिता और बीमार सास की भी वित्तीय सहायता करते थे। आर्थिक समस्याएं छाया के समान उनके पीछे चलती थीं। 1958 में जब मैं 7 वर्ष का था, उन्होंने मेरे अंकल ईरविंग के साथ मिलकर अपनी सारी पूंजी एक उभरते व्यवसाय में लगा दी। वे शिकागो क्षेत्र में फोर्ड की नई कार इडसल के सबसे बड़े विक्रेता बन गए। लेकिन इडसल डूब गई और मोटरकार के इतिहास में सबसे बड़ी असफलता के रूप में बदनाम हो गई। परिणामस्वरूप मेरे पिता कंगाल हो गए और उनका सब कुछ चला गया। मैंने उन्हें संघर्ष करते देखा था और हमें गरीबी से बचाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। अपने बच्चों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त पिताजी को हमारे साथ खेलना बहुत पसंद था और जब भी उन्हें समय मिलता वे हमें फुटबॉल या बेसबॉल के मैच दिखाने ले जाते। बाद में उन्होंने एक कार मैकेनिक की दुकान खोली और अपनी कड़ी मेहनत में कुछ ही समय में अच्छा धन कमाया। फिर भी 15 वर्ष की उम्र से मैं स्कूल से आने के पश्चात और छुट्टियों में अलग अलग नौकरियां किया करता था। मैं कभी भी अपने माता पिता के बोझ को बढ़ाना नहीं चाहता था, एक ऐसा गुण जो मैंने उन्हीं से सीखा था। मेरे घर छोड़कर कॉलेज के छात्रावास में जाने से एक दिन पहले मेरे पिताजी बहुत भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा, रिची चलो हम कार में घूम कर आते हैं। हम हाईलैंड पार्क के शेरवुड फॉरेस्ट की शांत सड़कों पर घूमने लगे जो हंसते और खेलते बच्चों की आवाज़ों से भरी थी। उन्होंने कहा, बेटा जब तक मैं जीवित हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कार रोककर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और भर्राती हुई आवाज़ में बोले, तुम्हारे पिता के रूप में मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, चाहे तुम सफल हो या असफल, अच्छे काम करो या बुरे, या भले ही मुझे धोखा भी क्यों न दो, जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुमसे प्रेम करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। अपने प्राण देकर भी मैं इस वचन को निभाऊंगा, कृपया कभी इसे न भूलना। भाव विभल होकर मैं सुनता रहा। मैं जानता था कि वे जो कह रहे थे उसके एक एक शब्द को पूरा करेंगे, और ऐसा ही हुआ। वे अपने वचन के प्रति पक्के रहे, यद्यपि मैं उनकी कल्पनाओं से कहीं अधिक उनकी परीक्षा लेने वाला था। बस गांव के बाहर एक पहाड़ी पर रुक गई और मैं अपनी यादों से बाहर निकला। मैंने फर्श पर रखा अपना बैग उठाया, उसे खोला और एक पेन एवं ईरान का एक हवाई पत्र निकाला। अपने माता पिता को अपना संकल्प बताने का समय आ गया था। प्रिय माँ और पिताजी, मैं यहाँ कुशल हूँ। कभी कभी रास्ते उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, फिर भी वे अच्छे हैं। काफ़ी विचार कर मैंने निर्णय किया है कि अब वो समय आ गया है जब मैं वो करूँगा जिसके लिए मैं लंबे समय से आतुर था। काफ़ी सोच विचार कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मेरे लिए यही सही रास्ता है। विश्व भर में लोग जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। लगभग 20 वर्ष से मैं एक पश्चिमी व्यक्ति की आंखों से देख रहा हूँ। मैंने पश्चिम के न्याय, दर्शन, धर्म, कला तथा जीवन शैली को देखा और अनुभव किया है। अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि पूर्वी देशों में जीवन कैसे जिया जाता है। मैं ऐसा अपने पुराने जीवन से भागने के लिए नहीं, अपितु एक नए जीवन का अनुभव करने के लिए कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे मैं विद्यालयों के माध्यम से नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि विद्यालय इस अपने संकीर्ण दृष्टिकोण से ही बताएंगे। इसलिए मैं स्वयं पूर्व की ओर जाऊँगा। इससे श्रेष्ठ शिक्षा और क्या हो सकती है? मैं ये सब आपको परेशान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कृपया परेशान होकर स्वयं को पीड़ा न पहुँचाएं। जितनी जल्दी आप चाहते हैं मैं उतनी जल्दी नहीं लिख सकता हूँ। कभी कभी तो मुझे डाक घर भी नहीं मिलता है। गैरी अभी मेरे साथ नहीं हैं, वो इज़राइल में हैं। मेरे साथ हमेशा कुछ मित्र रहते हैं। सभी मित्रों और संबंधियों को मेरा प्रेम दीजिएगा। आपका रिचर्ड। पत्र पर ईरान की मोहर लगी थी और भेजने वाले का पता नहीं था। यहाँ पे 8वां अध्याय समाप्त होता है।